दिन भर 21 अगस्त दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदर। कई दिनों की बातचीत के बाद तमिलनाडु में AIDMK के दोनों धड़ों का विलय, पनीर सेल्वम उप मुख्यमंत्री बनाए गए।
So I don't know what all these people are going to have a decision. Even I'm confused now. What they're going to do? Because they didn't call us at all, no?
So एक रियलिटी चेक करेंगे। CAG ने रेल में बिस्तरों और सफाई पर जो सवाल उठाए हैं, वो सही हैं या नहीं?
पेट्रोल तो बहुत पैथेटिक है सर, यूज किया हुआ ही पेट्रोल मैक्सिमम केसेस में देते हैं, और कोच की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत पुराना है।
जिक्र होगा बिहार की बाढ़ का और होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार आदर्श राठौर से। AIADMK के दोनों धड़ों का विलय हो गया है। विलय के बाद दोनों धड़ों के नेताओं ने कहा कि दोनों पक्षों की सारी मांगें पूरी हो गई हैं। एक धड़े का नेतृत्व मुख्यमंत्री के पलानीसामी कर रहे थे और दूसरे का पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम। विलय के बाद पनीर सेल्वम तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल CV राव ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ के पंडिया राजन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। स्पेन में प्रशासन का कहना है कि बार्सिलोना में लोगों पर गाड़ी चढ़ाने वाले शख्स के भागने का तरीका पता चल गया है। हमले में मरने वालों की संख्या 15 होने की भी बात कही गई है। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध के पास अभी भी हथियार हो सकते हैं, मगर वो कहां छिपा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन का कहना है कि हमले का संदिग्ध पहले पैदल भागा और फिर उसने एक कार को हाईजैक करके उसके ड्राइवर की हत्या कर दी। कैटालोनिया के क्षेत्रीय मंत्री जोआकिम फॉर ने मृतकों की संख्या बढ़ने की पुष्टि की है। हमले में मरने वालों की संख्या 14 से बढ़कर 15 हो गई है। सेंट जस्ट में एक कार में जख्मी हालत में मिला शख्स भी इनमें शामिल है। इस विक्टिम के बारे में अभी पता चला है, इसीलिए हम कैटालोनिया में हमले में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ये थे कैटालोनिया के क्षेत्रीय मंत्री जोआकिम फॉर्न के शब्द। राजदूतों को निकालने को लेकर चल रहे विवाद के बीच मॉस्को स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि वो बुधवार से रूसी नागरिकों को वीजा देना अस्थायी तौर से बंद कर देगा। दूतावास ने कहा है कि 1 सितंबर से रूस के नागरिक सिर्फ मॉस्को से ही वीजा ले सकेंगे। रूस के अन्य शहरों के अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों में ये काम अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया जाएगा। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी दूतावास के स्टाफ को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया था। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना की है।
मुझे लगता है कि अमेरिका के जिन लोगों ने ये फैसले लिए हैं, वे रूस के लोगों में अपनी ही सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करना चाहते हैं। ये तरीका जाना पहचाना है। इस तरह की रणनीति पूर्व सोवियत देशों में कलर रेवोल्यूशन में भी इस्तेमाल की गई थी। ये थे रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इराक के सरकारी सैन्य बलों का कहना है कि वे इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से तल अफार शहर को छुड़ाने के लिए लगातार दूसरे दिन आगे बढ़ रहे हैं। शिया मिलिशिया के समर्थन वाली मिलिट्री पुलिस का दावा है कि उन्होंने 20 IS लड़ाकों को मारकर शहर के बाहर 2 गांवों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। उन्होंने गोला बारूद से भरे 2 वाहनों को नष्ट करने की भी बात कही। तल अफार में IS के ठिकानों पर ड्रोन से हमले भी किए गए। इराक के जिन इलाकों में IS अब तक मजबूत है, उनमें अल तफार शहर भी शामिल है। अफगानिस्तान के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग ने अफगान सरकार से महिलाओं का कौमार्य परीक्षण बंद करने के लिए कहा है। आयोग का कहना है कि इस तरह के परीक्षणों से महिलाओं पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है और ऐसा करना उनके यौन शोषण के बराबर है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि काबुल और अन्य बड़े शहरों में अगर कोई महिला किसी पुरुष मित्र के साथ पाई जाती है तो पुलिस उनका वर्जिनिटी टेस्ट करवाती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस टेस्ट से गुजरने वाली महिलाएं समाज में बदनामी का दंश भी झेलती हैं। पुलिस ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस कमेटी के अध्यक्ष ने BBC को बताया है कि सहायता एजेंसियां साउथ सूडान के संकट का मुकाबला नहीं कर पा रहीं। देश में छिड़े गृह युद्ध की वजह से 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। कई दिनों की मंत्रणा के बाद तमिलनाडु में सत्तारूढ़ AIADMK के दो गिटों का करीब 6 महीने के बाद आज विलय हो गया। उनमें से एक का नेतृत्व मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी और दूसरे का पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम कर रहे थे। शाम 4:30 बजे पनीर सेल्वम ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें वित्त मंत्रालय का प्रभार सौंपा जाएगा। इस क्रम में पार्टी महासचिव वीके शशिकला को AIADMK से बर्खास्त करने की भी चर्चा है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
जब राजनीतिक विलय होता है तो जो भी कड़वी या बुरी बात कही जाती है उसको हर कोई भूल जाता है। अन्ना डीएमके के सुप्रीमो जयललिता के देहांत के बाद पिछले 8 महीनों से दोनों गुट के नेता इल्जाम लगाते रहे, यहाँ तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने भी पलनीस्वामी के सरकार को भ्रष्ट सरकार बुला दिया था। हालांकि कहा जा रहा है कि आज का समझौता बीजेपी के ही सौजन्य से हुआ है। बहरहाल आज पलनीस्वामी ने अन्ना द्रमुक पार्टी के दफ्तर पर पहुंचे और पलनीस्वामी के साथ हाथ मिलाने के बाद कहा, ये विलीनीकरण हमारे अम्मा के लिए ही हो रहा है, हमें कोई नहीं अलग कर सकता है। हम इस बैठक के बाद अम्मा के समाधि जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ये थे पलनीस्वामी के शब्द। उनके बाद पलनीस्वामी ने कहा, आज की विलीनीकरण पलनीस्वामी के धर्मयुद्ध की जीत है। हम मिलकर तमिलनाडु के विकास के लिए काम करेंगे, जैसे हमारे MGR और अम्मा ने कहा था। ये थे पलनीस्वामी के शब्द। पलनीस्वामी ने यह भी कह दिया कि पलनीस्वामी और वो पार्टी के संयोजक रहेंगे और एक 11 सदस्यों की समिति पार्टी का देखभाल करेगी। उनका पहला उद्देश्य दो हरे पत्तों वाला पार्टी प्रतीक को वापस लाना होगा, जो चुनाव आयोग ने सील कर दिया था। पलनीस्वामी की गुट तो मंत्रिमंडल में आ गई और शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही राजभवन ने पलनीस्वामी और उनके साथियों के विभागों की अधिसूचना भी कर दिया। लेकिन पलनीस्वामी गुट की प्रमुख मांग के बारे में आधिकारिक तौर से वीके शशिकला को उनके पद से निकालने का कोई बयान नहीं आया। बहरहाल शशिकला के भांजे TTV दिनकरन अपना रुख दिखाया जब उन्होंने कहा कि उनके पास 18 विधायक हैं, और उनके प्रवक्ता सरस्वती ने कहा, हमारे साथ और थोड़े विधायक आने वाले हैं। हमें पता नहीं वो कैसे शशिकला को उनके पद से निकाल सकते हैं जब उनको समर्थन 7 लाख कार्यकर्ताओं का है। ये थे सरस्वती के शब्द। दरअसल अन्ना द्रमुक के 134 विधायक हैं और उसमें से अगर 18 या 20 विधायक शशिकला के साथ हैं तो सवाल उठा है, क्या सरकार मजबूत है? हमने यह सवाल ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेन्नई के डायरेक्टर एन सत्यमूर्ति से पूछा। बिल्कुल नहीं, इस सरकार की स्थिरता खतरे में है। शशिकला को निकालने की कोशिश किसी भी हाल में न्यायालय में ही तय होगा, क्योंकि अन्ना द्रमुक पार्टी के संविधान के अनुसार उनके पार्टी के 1.5 करोड़ कार्यकर्ताओं को वोट करना होगा। ये नामुमकिन बात है। ये थे एन सत्यमूर्ति के शब्द। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति जो 8 महीने पहले तंदुरुस्त थी, वो आज तरल परिस्थिति में पड़ गई है। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार की बाढ़ ने राज्य के सैकड़ों गांवों को टापुओं में तब्दील कर दिया है। इन गांवों के लोगों के बाहर निकलने का रास्ता पानी में समा चुका है और लोग जरूरत की चीजों के लिए परेशान हैं। अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, छपरा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, शिवहर के साथ ही बाढ़ के कारण पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में भी काफी तबाही मची है। हजारों गांवों का बाकी दुनिया से संपर्क कट चुका है। बाढ़ के पानी से घिरे पूर्वी चंपारण जिले के ऐसे ही गांव नौरंगिया पहुंचे रवि प्रकाश। सुनिए वहां का क्या हाल है।
यह सैकड़ों उम्मीदों का हेलीकॉप्टर था जिसके आकाश में दिखते ही नौरंगिया गांव के लोग एक जगह जमा हो गए, इस आस में कि इससे खाने का पैकेट गिरेगा और जरूरी दवाइयां भी। लेकिन चारों तरफ से बाढ़ के पानी में घिरे इन लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। हेलीकॉप्टर नीचे आया और बिना कुछ गिराए उड़ता हुआ किसी और गांव की तरफ चला गया। इस बीच मेरी मुलाकात हुई रमेश कुमार यादव से। उन्होंने बीबीसी से कहा,
नौरंगिया पंचायत में कोई भी सरकारी लाभ मिलने से लोग वंचित है। ना यहाँ कोई नाव का व्यवस्था हुआ है, ना बोट है, ना सरकारी सुविधा कुछ उपलब्ध हो पाया है। अभी तक लोग तो बीमारी से भी जूझ रहे हैं, चारों तरफ से पानी ही पानी है, कहीं आने जाने की रास्ता नहीं है। दो दिन पहले हम वीडियो को फोन लगाए, वो फोन नहीं उठाए। तीन चार बार हमने कोशिश किया। डीएम साहब है अनुपम कुमार, स्पेशल बाढ़ के लिए आए हुए हैं, उनको भी हमने बार बार फोन लगाया, लेकिन फोन उठाने से असमर्थ है।
पूर्वी चंपारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी से लखौरा होते हुए मैं नौरंगिया आया था। जिस सड़क से मैं यहाँ आया उसके एक तरफ का इलाका छौड़ादानो प्रखंड का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ मोतिहारी प्रखंड के गाँव। रास्ते में पड़ने वाले छौड़ादानो प्रखंड के दूहो सुहो चौराहे पर कुछ लोग मिले। इन लोगों ने हमारी गाड़ी रोक कर पैदल आगे जाने की सलाह दी, क्योंकि आगे कमर पर पानी था। साथ ही यह भी बताया कि दुहसुह गांव में कल एक बच्चे की मौत बाढ़ के पानी में डूबने के कारण हो गई। हम अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर ट्रैक्टर से आगे बढ़े। रास्ते में हमें सुनील सिंह मिले। उन्होंने बताया कि नौरंगिया पंचायत के करीब एक दर्जन गाँव बाढ़ से प्रभावित है। सुनील सिंह ने बीबीसी से कहा,
नौरंगिया पंचायत का नौरंगिया गांव मुख्य रूप से प्रभावित है। सिमर या झीट कहिया है, बहुआरी है, अजगारवा है, लखौरा ज़्यादा प्रभावित है। और ये जो रोड है लखौरा से सिमरहिया झीट कहिया जाती है 13 किलोमीटर की रोड है, और ये पूरा रोड ध्वस्त हो गया है। और इसमें कहीं कहीं माने समझिए ना कि 5 फीट 5.5 फीट 6 फीट 7 फीट पानी है।
नौरंगिया के राम अयोध्या शाह कल शाम गाँव के बाहर शौच करने गए थे, अचानक पानी का तेज बहाव आया और वे बह गए। 10 घंटे के बाद आज दोपहर पास के गांव की बांसबाड़ी में उनकी बॉडी मिली। मैं उनके घर गया तो लोग उनके लाश के आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी बहू रंभा देवी दहार मार कर रो रही थी। रंभा देवी ने बीबीसी से
कहा,
हमें यहाँ कई और लोग मिलते हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, अपने अपने दर्द। इन सब में जो एक बात कॉमन है वह यह कि सरकार और सिस्टम का कोई नुमाइंदा उन्हें देखने तक नहीं आया। यह बाढ़ इनके लिए मुसीबतों का पिटारा लेकर आई है, इससे उबरने में अभी वक्त लगेगा। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए नौरंगिया, पूर्वी चंपारण में।
लगातार खबरों में बने हुए सृजन घोटाले की गूंज आज बिहार विधानसभा में भी सुनाई दी। वहीं कल रात इस घोटाले में गिरफ्तार एक सरकारी कर्मचारी महेश मंडल की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घोटाले का नाम क्यों पड़ा सृजन घोटाला, इसे वर्षों तक कैसे दिया जाता रहा अंजाम, ये घोटाला कैसे आया सामने, बता रहे हैं पटना से मनीष शांडिल्य।
बिहार का सृजन घोटाला अभी देश भर में चर्चा में है। इस घोटाले का नाम सृजन घोटाला इस कारण पड़ा क्योंकि कई सरकारी विभागों की रकम सीधे विभागीय खाते में ना जाकर या वहां से निकालकर एनजीओ सृजन महिला विकास सहयोग समिति के 6 खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी, और फिर इस एनजीओ के कर्ता धर्ता जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे की हेराफेरी करते थे। वरिष्ठ पत्रकार रमाशंकर मिश्र यह घोटाला सामने आने के बाद इस पर करीबी नजर रख रहे हैं। उन्होंने इस घोटाले के सामने आने की ये कहानी बताई।
ये मामला अगस्त के फर्स्ट वीक में सामने आया जब भागलपुर के वर्तमान जिलाधिकारी आदेश तीतर मारे द्वारा इशू चेक बैंक से लौट गया, और इसके बाद उन्होंने एक इंटरनल कमेटी गठित की जांच के लिए। तो उन्हें पता चला कि जो अकाउंट है इंडियन बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो उसमें पैसे नहीं हैं। तो फिर इसकी जानकारी उन्होंने राज्य सरकार की को दी।
मामला सामने आने के बाद 9 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई की विशेष जांच दल भागलपुर पहुंची। इस टीम को 3 दिन तो यह समझने में लग गए कि सरकारी खाते का पैसा एक एनजीओ के खाते में गया कैसे। इस घोटाले को अंजाम देने का ढंग अपने आप में अनोखा है। पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल बताते हैं,
एक फर्जी सॉफ्टवेयर बना के उसी से पासबुक अपडेट की जाती थी, उसी से स्टेटमेंट दी जाती थी, और जो एक्चुअल बैंक का जो ऑपरेशन था उस बैंक के ऑपरेशन को तो कॉम्प्रोमाइज कोई कर नहीं सकता था। इसलिए बैंक के ऑपरेशन के अलावे इन्होंने ऐसा एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जिससे कि फर्जी पासबुक ऑपरेशन हुई, फर्जी अकाउंट स्टेटमेंट बन गई। तो ये इनका बेसिकली मोडस ऑपरेंडी था।
इस घोटाले में मुख्य रूप से भू अर्जन विभाग की राशि के साथ हेराफेरी किए जाने की बात सामने आई है। साथ ही सहकारिता विभाग, भवन निर्माण विभाग, जिलाधिकारी के नजारत सहित करीब 10 विभागों की राशि भी इससे जुड़ी है। अब तक इस सिलसिले में 10 FIR हुए हैं और 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन NGO सृजन की पूर्व संचालिका मनोरमा देवी के बेटे अमित कुमार और बहू प्रिया कुमार की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। एसके सिंघल ने बताया,
750 करोड़ रुपए से अधिक अमाउंट इन्वॉल्व है और काफ़ी बड़ी संख्या में जो एक्यूज हैं उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। इसके अतिरिक्त लुकआउट का जो नोटिस है वह भी इशू किया गया है बिहार पुलिस की ओर से, ताकि जो स्वर्गीय मनोरमा देवी हैं उनके बेटे और उनकी जो बहू है वो इस मुल्क को ना छोड़ पाए।
जांच के दौरान इस घोटाले के तार अब भागलपुर के बाद कई दूसरे जिलों से भी जुड़े मिले हैं। साथ ही घोटाले की राशि बढ़ने की भी आशंका है। अब तक जांच में यह बात सामने आई है कि यह घोटाला 2004 से ही अंजाम दिया जा रहा था। मनीष शांडिली, BBC पटना।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं सरोज सिंह और मुकेश शर्मा।
आपकी राय। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा और आज मेरे साथ हैं
सरोज सिंह।
जी सरोज, मैं देख रहा हूं काफ़ी चिट्ठियां आपके हाथ में हैं, शुरू करिए सिलसिला।
सबसे पहले मैं ईमेल से शुरू करना चाहती हूं। ये ईमेल लिखा है जिशान नैयर ने बेगूसराय से, और उनका कहना है कि रेडियो प्रोग्राम में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब हम लोग ज़्यादा ध्यान ऑनलाइन पर दे रहे हैं, इसकी वजह से रेडियो का ग्राफ नीचे जा रहा है।
रेडियो का ग्राफ नीचे जा रहा है ये कहना शायद ठीक नहीं होगा जिशान जी, लेकिन ये है कि बदलते वक्त के साथ अलग अलग जरियों से लोगों तक पहुंचना हमारी कोशिश रही है। रेडियो पे हम अभी भी हैं और कार्यक्रम उसी शिद्दत के साथ करते हैं, उतनी ही लगन के साथ कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन ये भी साथ में देखने वाली बात है कि बहुत सारे लोग हमारे कार्यक्रमों को अब मोबाइल पर सुनते हैं। जो लोग शॉर्ट वेव पे नहीं सुन पाते हैं वो भी वेबसाइट पर आकर हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। तो कुल मिलाकर है BBC हिंदी सेवा ही अलग अलग स्रोतों से, माध्यमों से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार हो रहा है। रेडियो भी उतना ही प्रिय हमेशा से रहा है और रेडियो के जो हमारे श्रोता हैं वो भी उतने ही हमारे प्रिय हैं जितने ऑनलाइन के पाठक।
दूसरा ईमेल है, नरसिंह शास्त्री लिखते हैं मेरठ से। उनका कहना है कि वो BBC के नियमित श्रोता रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक होम पेज पर हमारे वेबसाइट पर रेहान फजल द्वारा राजीव गांधी पर एक विशेष प्रस्तुति पढ़ ली है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते का विवेचना भी उसी पर होने वाला है, तो इन्हें बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने पहले पढ़ ली तो जिज्ञासा खत्म हो गई है।
नहीं, जिज्ञासा खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि देखिए, कार्यक्रम जो है वो हम, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग स्रोतों से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो जो विवेचना होती है वो ऑडियो के ज़रिए रेडियो पर तो जाती ही है, साथ ही जो हमारे ऑनलाइन के पाठक हैं वो भी वंचित न रह जाएं, क्योंकि फिर ये होगा कि ऑनलाइन के हमारे पाठक कहेंगे कि आप रेडियो को तवज्जो देते हैं और हमको उतनी सामग्री नहीं मिल पाती। तो जो सामग्री एक माध्यम पर उपलब्ध है वो दूसरे मंच पर भी रहे, ये कोशिश रहती है।
अगला खत ही है, लेकिन इसमें लिखने वाले ने नाम नहीं लिखा है, रायपुर किशनगंज बिहार से वो लिखते हैं। 8 अगस्त के दिन भर कार्यक्रम में माजिद जहांगीर की एक रिपोर्ट थी कश्मीर से। संजय वर्मा एक विद्यालय चला रहे हैं जो कि स्वयं कश्मीरी पंडित होने के बावजूद मुस्लिम बहुल विद्यार्थियों को लेकर एक विद्यालय चलाते हैं। उन्हें ये रिपोर्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने लिखा है कि ये बकवास रिपोर्ट लगी।
ये बड़ी ही कटु आलोचना की है। कार्यक्रम में क्या अच्छा नहीं लगा ये थोड़ा सा अगर और बताते कि क्यों अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमारी कोशिश ऐसी किसी भी रिपोर्ट के ज़रिए ये होती है कि ये पता चले कि लोग किस तरह से अपने स्तर पर भी लोगों को प्रेरित करने वाले काम कर रहे हैं, और एक व्यक्ति की अकेली कोशिश अगर समाज में छोटा सा भी परिवर्तन लाए तो वो हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों तक सामने लाएँ।
आलोचना के बाद एक विवेचना की तारीफ में अगला ईमेल में पढ़ रही हूं।
जी जरूर, आप शुरू से आलोचना की चिट्ठियां लेके बैठी हैं।
ऐसा नहीं है, तारीफ भी बहुत आई है। माधव शर्मा है, राजकोट से लिखते हैं, बीबीसी पर रेहान फजल साहब की विवेचना उन्हें बेहद पसंद है, लेकिन उन्होंने एक आग्रह किया है कि विश्व वाले टॉपिक्स को, यानी कि जो वर्ल्ड कवरेज है, उस पर भी आप थोड़े से ध्यान दें। और उन्होंने विशेष आग्रह किया है कि नेपाल के राजा विक्रम वीरशाह राजवंश हत्याकांड पर विवेचना का एक एपिसोड जरूर तैयार करें।
माधव जी, जो विश्व की घटनाओं पर आधारित हमारा कार्यक्रम दुनिया जहान है, वो वापस लौटेगा और वहाँ पर एक तरह से वो भी दुनिया की खबरों की विवेचना होती है, तो वहाँ आपको वो मिलेगी। लेकिन ये जो नेपाल के इर्द गिर्द आपने ये जो बात कही है, ये हम रेहान जी तक आपकी मांग ज़रूर पहुँचा देंगे। और आप तो जानते हैं रेहान जी ज़्यादातर मांगे मान लेते हैं।
तो अगला खत है, ये भेजा है अंकित कुमार प्रजापति ने बलिया यूपी से, और इनका कहना है कि इनके ईमेल को हम अक्सर शामिल नहीं करते, बहुत दिन से लिखते आ रहे हैं ये, और इसलिए इनकी गुजारिश थी इस बार ये ईमेल छोड़ दिया, तो ये लिखना छोड़ देंगे, हम यही चाहते हैं कि सुनते रहें, शायद इसलिए इस बार ईमेल हम शामिल कर
जी इसमें ईमेल शामिल हो रही, पर सिर्फ इसलिए ईमेल शामिल कैसे होगी कि सिर्फ नाम आ जाए, है ना? तो कुछ कार्यक्रम में क्या अच्छा लगा या क्या नहीं लगा अंकित जी, ये भी बताइए, क्या खास चीज़ पसंद आ रही है या क्या नहीं आ रही है, तो आसानी होती है हमें अपने बाकी श्रोताओं से भी संवाद स्थापित करने में।
अगला जो ईमेल है वो जूजाराम गोदारा बाड़मेर राजस्थान से लिखा है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जो रेहान फजल की विशेष रिपोर्ट आई थी वो उन्हें बहुत पसंद आई।
आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं ये जानकर हमें अच्छा लगता है, इसी तरह अपनी चिट्ठियां आप हमें लिखते रहें। हमारा पता है आपकी राय, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है
hindi.letters@bbc.co.uk।
इसी के साथ मुकेश और सरोज को अनुमति दीजिए,
नमस्कार।
संसद में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट ने भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले को मिलने वाली सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट में जहां एक तरफ ट्रेन में दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए, वहीं वातानुकूल श्रेणी में मिलने वाले कंबल और चादरों की सफाई की पूरी व्यवस्था पर भी गंभीर टिप्पणियाँ की। सलमान रावी ने एक ऐसे ही लंबी सफ़र की ट्रेन में यात्रा की ताकि सीएजी की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों की जांच की जा सके।
भारत में रहने वालों के लिए रेल सिर्फ दूरियां तय करने का साधन नहीं, बल्कि ये यहां के लोगों की जीवन रेखा भी है। रेल सब कुछ जोड़ती है, कस्बे, शहर और संस्कृति। हजारों लोग हर रोज रेल से यात्रा करते हैं, हजारों के रोजगार इस पर निर्भर हैं, रेलवे कभी रुकती नहीं। मगर पिछले महीने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में कई चौंका देने वाले तथ्य सामने आए, जिससे यात्रा करने वालों की परेशानियां उजागर हुई। मुझे पता था कि मेरा सफर बड़ा लंबा भी है और मुश्किल भी। चूंकि ट्रेन पहले से ही लंबा सफर तय कर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, पूरे कंपार्टमेंट में गंदगी का अंबार पहले से ही था। दिल्ली से यात्रा शुरू करने वालों को उम्मीद थी कि आगे का सफर शुरू होने से पहले ही बोगी की सफाई हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग ट्रेन में सफाई कर्मियों की तलाश करते रहे, सिग्नल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया।
लेटरिन बाथरूम के लिए है ना, बहुत ही ज्यादा डस्ट वो रखा है।
इस बीच कोच अटेंडेंट ने दिल्ली में सफर पूरा कर उतरे लोगों की चादरें तय करनी शुरू कर दी। मैंने उनसे पूछा कि वो इन इस्तेमाल की हुई चादरों को तय करके क्यों रख रहे हैं।
ये तो पहले पैकेट में आया करता था।
अधिकारियों के अनुसार रेलवे हर वातानुकूलित श्रेणी के टिकट पर प्रति यात्री 20 रुपए अतिरिक्त किराया वसूलती है। इस अतिरिक्त शुल्क के जरिए रेलवे कंबल और चादरों की धुलाई की व्यवस्था करती है। जहां चादरें और तकिए के खोल हमेशा हर यात्री को धुले दिए जाने का नियम है, कंबल की धुलाई का प्रावधान हर 2 महीने के बाद है, मगर कई ट्रेनों में ये कंबल 6 महीनों तक नहीं धोए जाते हैं, ऐसा सीएजी की रिपोर्ट में उजागर हुआ है।
ये जो बेडशीट है, ये यूज बेडशीट आप दोबारा दे रहे हैं, तो ये आप तय करके रख रहे हैं, फिर जो आएगा उसको आप ये वाली दे देंगे?
अच्छा
पता है रखने में दिक्कत है, प्रॉब्लम होता है। ये तो फेंक देना है ना, इसको तो धुलाई के लिए आपको दे देना है, फिर दूसरे ऐसे धुलाई के लिए लेके जा रहे हैं आप।
सफर जारी रहा, एक स्टेशन के बाद दूसरा, लोग उतरते गए और नए यात्रियों की खेप चढ़ती रही। दरवाजे के पास सीट होने की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। सुबह हो गई और इस बीच ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकती रही और चलती रही, मगर पानी का नामो निशान नहीं।
कि A1 के अटेंडेंट कौन है? तो जस्ट SA1 में बंदे सोए हुए हैं, और मैंने कहा भाई देखो पानी भी यहाँ नहीं है, तो सर कहीं सोया होगा, मैं आसपास खोजा, मैं बोला कि जा कंप्लेन भी करने जा रहा हूँ, बोला ठीक है कंप्लेन कर लीजिए।
आने वाले समस्तीपुर स्टेशन पर TT साहब को भी पता चल गया कि मैंने रेल मंत्रालय के ट्विटर पर शिकायत की, तो उनके सुर भी बदल गए।
स्लीपर नहीं मिल रहा है तो पब्लिक को पसंद नहीं मिलेगा, इसका देख रहे हैं मतलब मोबाइल खेल है, और ना केवल यहाँ अंदर बैठ के ठंडा लगेगा, आपके प्रयास जागरूक हुआ तो हम लोग बातें नहीं सुनता।
TT श्याम चंद्र ठाकुर ने मुझे बताया कि ट्रेन में सफाई करने की जिम्मेदारी और बोगियों में पानी भरने की जिम्मेदारी भी ठेके पर दी गई है।
कोई अपना अपना काम नहीं करेगा, हम टीटी के लिए नहीं करेंगे, तुम सफाई गिरी नहीं करोगे, कोई गाड़ी का काम नहीं करेगा, कोई ड्राइवर का काम नहीं करेगा।
ट्रेन समस्तीपुर पहुंची तो यात्रियों ने गंदगी और पानी नहीं होने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। तभी सफाई कंपनी के सुपरवाइजर राजा कुमार सिंह भी प्रकट हुए।
पानी भरने के लिए आता है तो पाइप लगा देता है, मगर पानी नहीं भराता है, पानी का प्रॉब्लम हम लोग का नहीं ऐसे जाने का, हम लोग का काम है सर सफाई करना, पानी रहेगा तभी न करेंगे सर।
मेरी ही बोगी में सफर कर रहे पेशे से डॉक्टर विकास शाह ने मुझे बताया कि वो अक्सर इस ट्रेन से आते जाते हैं।
पेट्रोल तो बहुत पैथेटिक है सर, बहुत पैथेटिक है, 99% केसेस जो होते हैं यूज किया वही देते हैं, और कोच जो भी है, कोच की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत पुराना है।
अनाधिकृत लोगों का चढ़ना उतरना भी परेशानी का सबब बना रहा, क्योंकि आपका सामान ऐसे में भला कैसे सुरक्षित रह सकता है। AC में अनाधिकृत रूप से सफर करने वालों में पुलिस वाले और रेल कर्मचारियों की तादाद ही ज्यादा थी। सफर जारी रहा और परेशानियां भी बदस्तूर जारी रहीं। अगले दिन रात को ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंची, मैं तो उतर गया और ट्रेन डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो गई। मैं ये सोचता रहा कि आखिर जिस बेडशीट, तकिए और कंबल का इस्तेमाल मैं 2 दिनों तक करता रहा, वो पता नहीं किस यात्री की किस्मत में आए हुए। सलमान रावी, BBC न्यूज़ जलपाईगुड़ी।
और अब एक नजर डालते हैं खेल गतिविधियों पर वैभव दीवान के साथ।
पेरिस में आज से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप शुरू हो गई है। प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ओलंपिक्स 2016 में गए हरदीप और अन्य पहलवान रविंद्र और योगेश ग्रीको रोमन कुश्ती के पहले दौर में हारे। भारत में ग्रीको रोमन कुश्ती के बजाय फ्री स्टाइल कुश्ती का ज्यादा चलन है, ऐसा मानते हैं यशवीर सिंह, द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान।
ग्रीको रोमन हमारे यहाँ पर का ग्रीको रोमन प्रचलन कम है, फ्री स्टाइल का ज्यादा प्रचलन हमारे यहाँ पर, इसलिए ग्रीको रोमन में हमारा वो टैलेंट नहीं आता जो टैलेंट फ्री स्टाइल में आता है। उसके पीछे हमारा स्पोर्ट्स और कुश्ती कल्चर है, क्योंकि कुश्ती का कल्चर अगर मैं कहूँ तो 99% कल्चर जो है वो फ्री स्टाइल का ही है। इस वजह से भी हमारे जो है ग्रीको रोमन स्टाइल में थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन रहती है।
तो अब ग्रीको रोमन के बाद भारत के लिए क्या क्या चुनौतियाँ और हैं इस रेसलिंग चैंपियनशिप में?
नहीं, अभी तो कल भी है ग्रीको रोमन की कुश्तियाँ, अभी आज आधे वेट कैटेगरी हुई है तो बाकी जो आज कल होने हैं, तो इसलिए ये अभी नहीं कह सकता अभी चुनौती हमारी खत्म हुई। उसके बाद फ्री स्टाइल की कुश्तियाँ हैं, फ्री स्टाइल की कुश्तियों के बाद ग्रीको रोमन की कुश्तियाँ हैं, तो न सॉरी लड़कियों की कुश्तियाँ हैं, तो अभी मैं ये नहीं कह सकता अभी हमारी चुनौती खत्म होगी।
उधर ग्लासगो में हो रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में खबर है कि भारत के किदांबी श्रीकांत पहला सेट जीत गए हैं और दूसरे सेट में भी आगे हैं। और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। AIADMK के दोनों धड़ों का विलय हो गया है। विलय के बाद दोनों धड़ों के नेताओं ने कहा कि दोनों पक्षों की सारी मांगें पूरी हो गई हैं। स्पेन में प्रशासन का कहना है कि बार्सिलोना में लोगों पर गाड़ी चढ़ाने वाले शख्स के भागने का तरीका पता चल गया है। हमले में मरने वालों की संख्या 15 होने की भी बात कही गई है। राजदूतों को निकालने को लेकर चल रहे विवाद के बीच मॉस्को स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि वह बुधवार से रूसी नागरिकों को वीजा देना अस्थायी तौर पर बंद कर देगा। BBC समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।